ये जो समस्या है मन की, ये सभी के साथ एक ही तरह की है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि मन विचलित होता है या मैं विचलित होता हूं, दो अलग चीजें हैं। मन सिमरन करने बैठता है या मैं सिमरन करने बैठता हूं, आपने पहले यह विचार करना है। जैसे कि आप कोई खाना खाएं, उसमें मिर्च तेज हो, मसाले तेज हो, तो आपकी बॉडी के अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है। आप कहते हो एसिडिटी हो रही है या जलन पड़ रही है। तो जो खाना खाया उसका इफेक्ट देह पर पड़ रहा है। इसी प्रकार जो कुछ भी आप किसी भी प्रकार का कर्म करते हो, चाहे खाने पीने का कर्म हो, चाहे वो पैसा कमाने का कर्म हो, चाहे लोग व्यवहार का कर्म हो, तो ये सब एक संस्कार, एक इंप्रेशन, एक असर छोड़ते हैं। हर क्रिया आपकी एक असर छोड़ती है, एक इफेक्ट छोड़ती है, और वो इफेक्ट सीधा देह पर पड़ता है और मन पर पड़ता है। देह और मन दो अलग चीजें नहीं है, ये एक ही चीज। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। देह के बारे में तो हम तुरंत समझ लेते हैं, लेकिन मन के बारे में कंफ्यूज रहते हैं। मन और जीव, ये दोनों वास्तव में ये अलग चीजें हैं। देह और मन तो एक है, लेकिन देह, मन और जीव, जीव इन दोनों से वास्तव में अलग है। तो जिस प्रकार इस पेट के अंदर जलन पड़ रही है, एसिडिटी बन रही है, तो पता है कि मुझको देह पर असर पड़ रहा है इसका, ये तो मुझे पता है। लेकिन देह पे असर तो पड़ रहा है, लेकिन देह बेचैन नहीं हो रही है, बेचैन मैं हो रहा हूं। अब मैं इस बेचैनी से मुक्त होने के लिए देह का इलाज कर रहा हूं, प्रैक्टिकली यह करता हूं नहीं करता हूं। तो मैं बेचैनी से मुक्त होने के लिए देह का इलाज करता हूं, और देह यदि स्वस्थ हो जाए तो मैं रिलीफ महसूस करता हूं। प्रैक्टिकली देखो ये होता है या नहीं होता है। जो व्यक्ति देह से जितना ज्यादा अटैच्ड होगा, जितना गहरा उसको देह के प्रति मोह होगा, उतनी ही उसकी बेचैनी भी बढ़ जाएगी। अब दो व्यक्ति घर में, आपके परिवार में सदस्य हैं, एक को फीवर आता है, दूसरे को भी फीवर आता है। आप देखते होंगे एक ज्यादा बेचैन होता है, कंडीशन बिल्कुल सेम है दोनों की, हाय हाय करेगा, परेशान करेगा, या बार बार दवा मांगेगा या दवा खाना नहीं चाहेगा, और दूसरा शांति से पड़ा रहता है, उसको जैसा कहो या जैसा बताओ वो कहता है कि सोचता है कि बात ठीक है तो मानकर अपने शांति से पड़ा रहता है, और उस अवस्था जो उसकी बनी हुई है, बिगड़ी हुई, उसको सहन करता है। वक्त आने पर दोनों ही ठीक हो जाते हैं, जो बेचैन हो रहा है वो भी ठीक हो जाता है, जो चैन से वक्त काट रहा है वो भी ठीक हो जाता है। तो अंतर कहां हुआ दोनों में? जीव तो दोनों एक जैसे हैं, जीव में कोई अंतर नहीं है, तो अंतर कहां है? अंतर जीव के मन और देह के साथ अटैचमेंट में है। जो बेचैन ज्यादा हो रहा है वो मन और देह के प्रति ज्यादा आसक्त है, जो कम बेचैन हो रहा है वो मन और देह के प्रति कम आसक्त है, भले ही वो इस विज्ञान को ना समझता हो, लेकिन प्रैक्टिकली उसके साथ यही हो रहा है। तो इसीलिए ये जितने भी शास्त्र हैं ये दो बातें करते हैं। जब हम एक आम व्यक्ति होते हैं, अभी हम योगी नहीं बने, भक्त नहीं बने, अभी हमको अध्यात्म की, ईश्वर की अपने बारे में कोई समझ नहीं है, समझ है तो बायोलॉजिकल समझ है हमको, तो उस हालत में शास्त्र आपको एक सीधा सीधा निर्देश करते हैं कि भाई गलतियां करने से बचो। अर्थात जो तुम जानते हो कि गलतियां हैं, हर व्यक्ति समाज में आप देखिए, चाहे वो अनपढ़ हो, लेकिन जो हम व्यवहारिक गलतियां करते हैं वो कोई भी बता देगा, भाई तुम गलती कर रहे हो, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला वो कहते हैं कि जो हम जानते हैं गलतियां कर रहे हैं, चाहे वो खान पान की गलतियां हों, चाहे वो दूसरे से बातचीत की गलतियां हों, चाहे रहने के प्रकार में गलतियां हों, चाहे सफाई रखने में गलतियां हों, जो भी हों आपकी, वो एक दूसरे को निर्देश करते हैं कि भाई ये गलतियां मत करो, इसका असर दूसरे पे पड़ता है, तुम पे तो पड़ता ही है, दूसरे पे भी पड़ता है, दूसरे भी परेशान होते हैं। तो शास्त्र सबसे पहले आपको निर्देश देते हैं कि तुम्हारा जो ये बाहर का स्वार्थ जीवन है इसको पवित्र करो, इसको ठीक करो, तब जाकर आपकी बुद्धि इस लायक बनती है कि आपको आगे का निर्देश कोई दिया जा सके। कोई बड़ा ही हिंसक, बड़ा ही शैतान प्राणी हो तो उसकी सत्संग में रुचि होगी? नहीं होगी। आप कह भी दोगे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि बिगड़ा हुआ इतना है कि पहले उसका बिगड़ापन जब तक कम नहीं होगा वो इसके लायक बनेगा ही नहीं। तो उसी प्रकार जब तक हमारी ये जो बाहर का जीवन सुधर नहीं जाता, तब तक हमको आगे की बात, ईश्वर भक्ति वाली बात हमारी समझ में आ नहीं सकती। तो जब हमारा ये दैनिक जीवन सुधर जाता है तब हमारी बुद्धि होश में आती है, या यूं कहिए कि जीव होश में आता है कि अब क्या करूं कि इस देह की मुसीबत से मैं मुक्ति पाऊं। देह बीमार भी हो जाती है, देह बूढ़ी भी हो जाती है, देह मर भी जाती है, नहीं मन मेरा जो है कभी किसी इच्छा के लिए बड़ा बेचैन हो जाता है, मैं उसके जब वशीभूत होता हूं तो बड़ा परेशान होता हूं, ये सारी बातें उसको फिर वो जब वो देखता है। ऐसे व्यक्ति के लिए जब किसी गुरु का संदेश मिलता है, गुरु का मार्गदर्शन मिलता है, या शास्त्रों का मर्म उसको समझने का मौका मिलता है सत्संग के द्वारा, तब वो उस पर ध्यान देता है। तो वहां उसको बताया जाता है कि भाई तू जो कुछ भी करता है अपने आप को देह समझकर, तो तेरा जो जीवन है ये वासना का जीवन कहलाता है, और वासना का जीवन जो है वो पांच विकार से युक्त है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तू कुछ भी करेगा संसार में तो ये पांच विकार तेरे मन के अंदर प्रवेश करेंगे, ये बढ़ेंगे। तो इन विकारों से मुक्त होने के लिए उसको एक दूसरी बात बताई जाती है कि भाई देख, तू देह और मन को तो जानता है, लेकिन तू ये नहीं जानता क्या कि इस देह मन को चलाने वाला कोई, इस देह के अंदर और कोई भी मौजूद है। मैं तो ये समझता हूं कि मैं चलाता हूं, लेकिन उसको सत्संग में बताया जाता है कि भाई देखो, इस देह का जो संचालन है वो ईश्वर शक्ति से होता है, वो ईश्वर के द्वारा होता है। और उसका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यह है कि जब ये देह जीव को मिलती है, या जब ये देह पैदा होती है, तो इस देह से क्या होगा ये उसका प्रारब्ध जन्म के साथ ही प्रभु डिसाइड कर देते हैं, और उस प्रारब्ध के अनुसार ही तेरी देह का संचालन संसार में किया जाता है। तो जब उसको इस बात का एहसास होता है कि मैं ईश्वर के हाथों में गुलाम हूं, मैं ईश्वर के हाथों में पूरी तरह से गुलाम हूं, तब उसके अंदर प्रश्न उठता है, क्या मेरी आजादी का कोई रास्ता नहीं है? महर्षि रमण से एक बार पूछा गया, महर्षि मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा भी तो होती है। तो महर्षि रमण कहते हैं देयर इज नो फ्री विल, ये महर्षि रमण का उत्तर है। स्वतंत्र इच्छा नाम की कोई वस्तु नहीं होती। यहां आके महाराज जी की वाणी देखो इसी को सिद्ध कर रही है कि जो होना सो हो रहा प्रभु की आज्ञा माए। अब इन दो बातों में कोई डिफरेंस है? शब्दों का प्रयोग अलग अलग है, लेकिन हम में से जितने भी सत्संग यहां बैठे हुए हैं, हम में से आज तक किसी ने भी कभी इस बात को स्वीकार किया? आप विचार करके देखें। ट्रुथ मेरे बारे में ये, लेकिन विचार करके देख लो, हम में से किसी ने भी आज तक कभी इस बात को स्वीकार किया क्या? जानते हमें, हमने 100 बार सुनी होगी ये बात, लेकिन आज तक मैंने कभी इसको स्वीकार नहीं किया। मैं इसी कंफ्यूजन में रहता हूं कि नहीं, मेरे पास पावर है, कुछ तो मैं कर ही सकता हूं, तो मुझको यही पता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता, मुझको ये पता नहीं है। और यदि इस बात का पता आपने शास्त्रों के स्वाध्याय के द्वारा नहीं लगाया, या नहीं पढ़ना लिखना आता, तो सत्संग के श्रवण के द्वारा आपने इस बात का निर्णय नहीं किया, तो पूरी जिंदगी आप कंफ्यूज होकर जियोगे, आपका कर्तापन कभी भी खत्म नहीं हो सकेगा, वो इम्पॉसिबल चीज है। कुछ भी कर लो आप, आपका कर्तापन खत्म हो ही नहीं सकता जब तक आपके अंदर इस बात के प्रति कंफ्यूजन है। तो इसीलिए अध्यात्म का रास्ता विवेक से शुरू होता है, अपने बारे में, ईश्वर के बारे में, मन के बारे में, संसार के बारे में सही समझ का होना, इसका नाम है विवेक। जो चीज जैसी है वैसी ही मैंने समझनी है, और जो चीज जैसी है वैसी ही वो शास्त्रों में लिखी हुई है, वही बात सत्पुरुष कहते हैं। उस सिद्धांत से हटके कोई सत्पुरुष कह ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अनुभव की बात है। तो अनुभव एक जैसा होता है, आध्यात्मिक अनुभव एक जैसा होता है, वहां कोई भेद नहीं होता। आज तक किसी सत्पुरुष ने यह नहीं कहा कि ईश्वर दो तरह का होता है, कहा हो तो बता दी। तो रहस्य यह है हमारे बंधन के पीछे कि देह जब प्रभु के अधीन काम कर रही है, या यूं कह लें कि प्रारब्ध के अधीन काम कर रही है, तो मन क्या है? मन को सूक्ष्म शरीर कहते हैं, सूक्ष्म देह कहते हैं। तो मन और देह तो एक साथ हुए ना, तो जो जो देह से कर्म होंगे, और आप यदि अपने आप को देह समझ रहे हो, तो जो कुछ भी कर्म का फल होगा उसके संस्कार मन के अंदर बनेंगे नहीं बनेंगे? वो संस्कार मन के अंदर इकट्ठे होंगे नहीं होंगे? तो बताइए, आप मन से ही मुक्ति पानी है। ईश्वर भक्ति क्या है? सिमरन क्या है? मन से मुक्ति पाने का तरीका है। तो जब आज तक आप अपने आप को देह समझ कर जी रहे हो, आपके अंदर ये विवेक ही नहीं है, ये समझ ही नहीं है कि मैं वास्तव में जीव हूं जिसको देह मिलती है, जिसको हम जन्म कहते हैं, और जो देह बिछड़ती है जिसको हम मृत्यु कहते हैं। तो जीव को देह का मिलना इसको जन्म कहते हैं, जीव की देह का बिछड़ना इसको मृत्यु कहते हैं। तो देह मिल रही है और बिछड़ रही है, तो प्रश्न उठता है कि जीव का क्या हुआ, ये जीव कौन है? यदि आप शास्त्र को ध्यान से देखेंगे तो ये प्रश्न नहीं आएगा कि आज तक तो मैं जो कुछ भी समझता रहा हूं, मैं पूजा पाठ कर रहा हूं, ठीक है सिमरन भी कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि मैं देह नहीं हूं। कोई मेरा परिचय पूछता है तो बड़े शौक से बताता हूं, ये मेरा साइज है, ये मेरा नाम है, ये मेरा गोत्र है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, सब चीज बताते हैं। अपना परिचय तो कोई देते ही नहीं उसको, आप देह का परिचय आप उसको देते हैं। क्योंकि मैं देह बनकर ही जी रहा हूं। देह के साथ जीना अलग बात है, देह बनकर जीना अलग बात है, इन दोनों में बड़ा अंतर है। तो जब तक मैं देह बनकर जी रहा हूं, तब तक जिस प्रकार देह के बंधन में हूं, उसी प्रकार मन के बंधन में भी हूं। तो इसलिए महाजी कह रहे हैं, प्रेमी जब तक विवेक नहीं होगा तब तक अभ्यास सही नहीं बन सकता। हम अभ्यास कर रहे हैं लेकिन सही अभ्यास नहीं कर रहे, क्योंकि सही अभ्यास मैकेनिकली नहीं होता है, सही अभ्यास विवेक के साथ होता है। और जब विवेक होगा तो आपके अंदर जो अटैचमेंट है, ये मन की इच्छाओं के प्रति, देह के प्रति और संसार के प्रति, संसार के लोगों के प्रति जो ये अटैचमेंट है, इसके प्रति ये तेरे मन में जो राग है, अटैचमेंट का मतलब राग, तो जब विवेक आएगा जीव के अंदर या बुद्धि के अंदर, तब क्या होगा, ये राग भी टूटेगा। तब आपको पता लगेगा ये तो बंधन है मेरे लिए। मैं जानता हूं ना, देह बीमार भी होगी, देह बूढ़ी भी होगी, देह छीनी भी जाएगी, तो मेरा क्या होगा, तब आप अपने बारे में सोचोगे। इसलिए महाजी कह रहे हैं कि प्रेमी मौत को याद रख, मौत की याद सत विचार है। देखो संतराज पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, मौत की याद सत विचार है। क्यों सत विचार है, ये मौत की याद ही तुझको सत से जोड़ती है, ईश्वर से जोड़ती है। मौत की याद छोटी मोटी बात नहीं है, ये संसारी तो डरेंगे, कहेंगे क्या बात करते हो, मौत तो भूलने की चाहिए, याद करने की चाहिए। अरे मुसीबत को क्यों याद करो, अच्छी चीजें याद करो, सुख को याद करो, संसार तो ये कहेगा ना। लेकिन सत्पुरुष कहता है जिंदगी यदि बचानी है तो मौत को याद रख, क्योंकि मौत किसकी होगी, देह की होगी, जो तुझको सबसे ज्यादा प्रिय है, जिसके मोह में सबसे ज्यादा तू फंसा हुआ है, जो सारे विकारों की जड़ है, जीव के अंदर अर्थात जीव के मन के अंदर विकारों के जो संस्कार है ना, ये पांच विकारों के, तो इसकी जड़ कौन है, देह ही है। देह के द्वारा ही ये भोग विलास करता है, देह के द्वारा ही कर्म करता है, और उसका इफेक्ट पांच विकार के रूप में मन के अंदर उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो जब ये विज्ञान हम सीखते हैं, इसलिए महाजी ने समता विलास में विवेक, वासना विवेक पूरा चैप्टर लिखा चार खंडों में 120 वचन में, कितना लंबा चैप्टर है वो, ये पूरा विज्ञान वहां लिखा हुआ है। और इससे फिर मुक्त होने का रास्ता कहां लिखा, फिर योग मार्ग बोध में लिखा, फिर भोगवाद स्थिति, शुद्ध विवेक, शुद्ध वैराग्य, शुद्ध निधिध्यास, वो भी चार चैप्टर है उसके, योग मार्ग बोध के। तो वो सिस्टमेटिक है पूरा, आप यदि योग मार्ग बोध पढ़ें तो मैं जहां खड़ा हूं आज, उसका पहले का नाम है भोगवाद स्थिति, मैं यहां खड़ा हुआ हूं। और स्थिति ये कितनी दर्दनाक है, कितनी खतरनाक है मेरे वास्ते। तो अगला है फिर शुद्ध विवेक, सही समझ क्या है, जो मैं जहां फंसा हुआ हूं इसके बारे में सही समझ क्या है, शुद्ध विवेक दे रहा है। उसके बाद वो लिख रहे हैं शुद्ध वैराग्य, कि तू अपनी भोगवाद स्थिति को समझता है यदि, और ये क्या है ये समझने के बाद तू विवेक बुद्धि या जो तू तेरी बुद्धि जागृत होती है या सही समझ तेरे आती है, तब तेरी तीसरी स्थिति आती है शुद्ध वैराग्य। हर चीज से तेरे मन में जो राग था, बड़ा वेलकम करता था उनको, इकट्ठा करने की कोशिश करता था, उन्हीं में फंसने की कोशिश करता था जानकर, अब तू ये कोशिश करेगा कि इसमें से कैसे निकलूं, इस माया जाल में से। जैसे आप प्रश्न कर रहे हैं कि सिमरन करने बैठते हैं तो इच्छा करके बैठते हैं कि मैं प्रभु का नाम जपने बैठा हूं, मेरा कुछ कल्याण होगा, और दो चार मिनट तो सिमरन बन पाता है, उसके बाद من جو ہے اسے میں کرنے نہیں دیتا. یہی تو پریکٹیکل پوزیشن ہوتی ہے. تو کیوں نہیں کرنے دیتا؟ کیونکہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں ہے. یہ تو میں نے سیکھ لیا گرو واکیہ سن کر یا ستسنگ سن کر کہ سمرن کرنے سے کلیان ہوتا ہے, لیکن کیسے کلیان ہوتا ہے اس کا مجھے پتا نہیں. تو سمرن میں نے میکینیکلی اپنا لیا, باقی چیزوں کا مجھ کو کوئی نرنے نہیں ملا. تو اسی لیے 99% لوگ سمرن میں اسی پرکار فیل ہوتے ہیں. 99% ایک ویکتی کی بات نہیں ہے. اور وہ جو 1% ہے وہ وہی سفل ہوتا ہے جس کے اندر وہ ویویک اور ویراگیہ. تو میں نے بھی یدی سفل ہونا ہے تو یدی میرے اندر بھوگواد استھتی کے بارے میں پورا انالیسس یدی بیٹھے ہوا ہے دماغ کے اندر, وہ انالیسس بیٹھے گا تب آپ کے اندر ویویک آنے کی سمبھاونا ہے. یدی وہ انالیسس آپ کا انکمپلیٹ ہے تو ویویک کبھی آپ کے اندر نہیں آ سکتا, یاد رکھیں. اس لیے ایک برہم رشی نے چیپٹر لکھا ہے یوگ مارگ بودھ, ایسے نہیں لکھا گیا. وہ سارا پروسیس جو ہے گیان کا وہ آپ کی بدھی سے گزرنا ہی چاہیے. اسی لیے ان چیپٹرز کو 50-50 سال پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے جب تک آپ کے اندر ویویک پرماننٹ نہیں آ جاتا. آپ کے اندر یہ ایک بار پڑھنے کی چیزیں نہیں ہے. میں نے کتاب نہیں ہے جو پڑھ لی میں, ہاں جانتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے. اسٹوریاں پڑھی جاتی ہیں اس طرح سے, جانتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے. شاس نہیں پڑھے جاتے. تو ہر شبد جو آج سمجھ رہے ہو 20 سال بعد دیکھو کہ ارے میں نے تو اس کو غلط سمجھا تھا, یہ تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے. جو آج آپ ٹھیک لگ رہا ہے میں بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہوں, وہ 20 سال بعد پتہ لگے گا یہ تو میں نے ٹھیک نہیں سمجھا تھا. بات تو اصل میں یہ ہے. یہ تو شاستوں کا مرم, آپ کی جیسے سے شردھا بڑھتی ہے, جیسے سے وشواس بڑھتا ہے, جیسے سے آپ کو ایشور کی آوشیکتا زیادہ محسوس ہوتی ہے, جیسے جیسے آپ کا جو ہے جیون شاستوں کے گرو کے مارگدرشن کے انوسار پوتر ہوتا ہے, ویسے ہی ویسے انہی شبدوں کا جو اصلی ارتھ ہے وہ میرے آگے کھلنے لگتا ہے. تب آپ دیکھتے ہو کہ اس بھوگوادی جیون کو ٹھیک سمجھنے کے بعد میرے اندر یہ ویویک اور ویراگ آ رہا ہے. اور جب ویویک اور ویراگ آ رہا ہے تو چوتھی چیز بھی آپ کے اندر دیکھیں گے آ رہی ہے, شدھ نردھیاس, کہ پربھو کی پریم سے یاد, ایکاگر من سے یاد میں اس سے بن پا رہی ہے. تو واستوکتا یہ ہے کہ سارے وکار من کے انترگت ہیں اور سارے کرم دیہ کے انترگت ہیں, دیہ کے دوارا ہوتے ہیں. تو جیو ان دونوں کی آسکتی میں یا ان دونوں کے موہ میں پھنسا ہوا ہے. تو جیو کو جب یہ وشواس ہوتا ہے کہ دیہ اور من یہ تو میرے لیے بندھن کا کارن ہے, بے چینی کا کارن ہے, دکھ کا کارن ہے, دوشوں کا کارن ہے, تو یہ جیو پھر اس دیہ کے اندر جیسا گرو نے بتایا ہے اس ایشور کی کھوج کرنا چاہتا ہے. جیسے من اس دیہ کے اندر موجود ہے, ایشور بھی تو موجود ہے. کم سے کم سمرن کرنے والے کو یہ ڈاؤٹ تو نہیں ہوتا, یہ تو جانتا ہے کہ ایشور ہے, تبھی وہ سمرن کرنے بیٹھے گا. تو اس دیہ کے اندر وہ ایشور سرو سمرتھ موجود ہے, جو اس دیہ کو پیدا کر رہا ہے, جو اس کا دیہ کا سنچالن کر رہا ہے جیو کے لیے, اپنے لیے نہیں کر رہا, جیو کے لیے کر رہا ہے. تو جیو جو من دیہ ہے اس کا غلام بن کر جیے یا ایشور کا بھکت بن کر جیے, یدی یوگ مارگ بودھ اس کو دھیان سے پڑھے گا, بھوگواد استھتی کو سمجھے گا, شدھ ویویک شدھ ویراگ کو سمجھے گا, تو اس کا شدھ نردھیاس ہوگا ہی. اور شدھ نردھیاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ من کے اندر جو یہ بھوگوں کی واسنا تھی جس کو میں پہلے ویلکم کرتا تھا, سواگت کرتا تھا, اس کو پالتا تھا میں, بڑھاتا تھا میں, اور اس بڑھانے کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, وکاس, ڈیولپمنٹ. جو میرا پتن تھا اس کو میں ڈیولپمنٹ کہتا تھا. تو یہ ویکتی پھر آپ سوچئے سوابھاوک روپ میں ہی سادہ ہو جائے گا, نہیں جائے گا, یا ایسے کوئی پڑھانے کی ضرورت پڑے گی پاٹھ کی تو سادہ ہو جائے. اس کو کوئی سادگی کا پاٹھ پڑھانے کی ضرورت نہیں, یہ سوئم ہی سادہ ہو جائے گا. تو جیو کو جب اپنی بے چینی نظر آئے گی, اپنا بھے, اپنی چنتا نظر آئے گی ان ایبوں کے کارن, تو ایبی کیوں رہے گا وہ؟ ایک ویکتی لاکھ ستسنگ سن لے, شراب پیتا ہے, پیتا رہتا ہے. کئی ستسنگ جگہ شراب پیتے رہتے ہیں, زندگی میں شراب پیتے رہتے ہیں. کیوں پیتے رہتے ہیں بھائی؟ اس سے پوچھو یہ شراب اچھی چیز ہے, کہا نہیں, کہے گا یہ بری چیز ہے. تو کیوں نہیں چھوڑ رہا ہوں؟ عادت پڑی ہوئی ہے. تو ہم ایبوں کے ایسے ہی غلام ہیں. پانچ وکار مہا دکھدائی جلے سکل سنسارا, یہ ایب ہے نا, جیو کے واسطے تو ایب ہوا نا یہ. تو ان سے میں نے 100% مکتی پانی ہے, اور ان ایبوں سے 100% مکتی کا نام ہی ایشور پراپتی ہے. بات تو سمجھیے آپ. تو اتنے موٹے موٹے وکار جو سارا سماج جانتا ہے یہ ایب ہے, اس کو بھی میں نہیں چھوڑ سکتا, تو کھا کے ایشور کی بھکتی کروں گا میں؟ وچار کر کے دیکھو, کیا اس سے آشا کرو گے ایشور بھکتی کرے گا؟ یہ جو اتنے موٹے ایب کا شکار ہے وہ ایشور کی بھکتی کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے. اس کے بعد وہ آشا کر سکتا ہے کہ اب میں شاید کر پاؤں. تو کتنے مجبور ہیں ہم اپنے دوشوں کے کارن, ذرا وچار کر کے تو دیکھیے. تو اسی لیے یہ پورا وگیان ہے جو دو چیپٹر میں ہی مہاراج جی نے سنتا بلاس میں لکھ دیا ہے, اور پورے وشو میں آج تک کوئی شاست کی رچنا ایسی نہیں پورے وشو کے اندر جو اس پرکار سے انالیسس ہمارے آگے پیش کیا گیا ہو. تو یہ ایشور کی دین ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں ایشور کی دین. ماں جی کہتے ہیں پریمی یہ بھوگواد کا زمانہ ہے, بھوگواد کا یوگ ہے, آگے چل کے یہ بھوگواد اور گہرا ہونا ہے, تو وقت کی ضرورت تھی, اس لیے ایشور نے یہ پورا وگیان سمتا ویویک, واسنا ویویک اور یوگ مارگ بودھ کے روپ میں یہ ہمارے لیے پربھو نے چھوڑ دیا. اور اس کو میں پڑھ کر منن کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا. مجھے زندگی میں یدی کوئی پریمی ملا ہو جس کو اس کی ٹھیک سمجھ ہو, ایک ملا بس, دوسرا پریمی مجھے نہیں ملا کوئی بھی جس کو ان دو چیپٹرز کی. گرو تو مہاراج جی کے بھی 900 شیشے تھے لگ بھگ, لیکن ان کو ٹھیک پرکار سے سمجھنے والا مجھے کیول ایک پریمی ملا بس. تو کیسے پڑھتے ہیں ہم ذرا بچار کر کے تو دیکھو, گرو کا شاستر ہے میرا, گرو کا گیان ہے یہ. اور یدی کوئی پیسہ کمانے والی کتاب ہوتی, چاہے وہ ایم بی اے کا کورس ہوتا, چاہے وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ہوتی, یا انجینئرنگ کی کوالیفیکیشن ہوتی ہی, میڈیکل کی کوالیفیکیشن ہوتی, کیا کیا سیکھ لیتا ہوں میں؟ ارے انٹرمیڈیٹ کا ودیارتھی تو جاتا ہے یہ سب کام کرنے کے لیے, کیا کیا سیکھ لیتا ہے وہ؟ تو میں گرو کا ششیہ ہوں, ایک سمتا ولاس کے دو چیپٹر نہیں سیکھ سکتا میں؟ تو میری ڈیزائر کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ یہ سدھ کرتی ہے کہ میری ڈیزائر کہاں کھڑی ہوئی ہے. میں اتنے گہرے موہ میں پھنسا ہوا ہوں سنساری کی اچھاؤں کے, مجھ کو اس سیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. یہ تو ایشور کی رچنا ہے, یہ تو منش کی رچنا نہیں ہے. شاہ سے منش کی رچنا نہیں ہوتا, منش کی رچنا ہوتی ہے تو وید ویاس گیتا تو خود لکھ رہے ہیں. دیکھو نا, وید ویاس گیتا تو خود لکھ رہے ہیں, لیکن کرشن فیمس ہیں, کرشن کا نام تھا تو کرشن کے نام سے لکھ دیا. ایک یدھ کی گھٹنا کا بیک گراؤنڈ لے کے انہوں نے کرشن کے نام سے گیتا کا سندیش دے دیا. تو وہ گیان ایشور کا ہے یا وید ویاس کا ہے گیان؟ نہ وہ کرشن کا گیان ہے نہ وہ وید ویاس کا گیان ہے, وہ تو ایشوری گیان ہے نا, وہیں سے آیا ہے. تو وہ گیان دنیا کے ہر منش کے لیے, جس دیش کی اچھا ہوتی ہے وہ اپنا ٹرانسلیشن کر لیتا ہے, اس میں لوگ موجود ہیں, دنیا میں لوگوں کی کمی نہیں ہے. अब सोमराज जी की एक किताब है उपनिषद का भाष्य, वर्ड स्पीच टू द फॉस्टियन मैन, अंग्रेजी में लिखी हुई है, वर्ल्ड फेम की बुक है वो। लेकिन एक स्पेनिश था स्कॉलर, उसकी सोमराज जी से फ्रेंडशिप थी और दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। वो स्पेनिश का मास्टर भी था, इंग्लिश का मास्टर भी था। उसने पूरी सीरीज की स्पेनिश ट्रांसलेशन कर ली और स्पेन में पब्लिश भी करा ली। अब स्पेन के लोग हमारे उपनिषद को पढ़ सकते हैं, लेकिन जिसकी इच्छा है वो कर सकता है ना, बात ये हो रही है। तो इसीलिए जो भी सत्पुरुष धरती पर आता है वो जगत गुरु होता है, उसका ज्ञान पूरे जगत के लिए होता है, किसी एक देश के लिए, एक समाज के लिए नहीं होता वो। ये तो हमारा दृष्टिकोण होता है, हम देखते हैं एक सीमित दायरे के अंदर, मेरे देश की बात है, मेरे गुरु की बात है, मेरे लिए है। तो गुरु वो ब्रह्म ऋषि है और ब्रह्म पूरे जगत का होता है, न कि एक और दो का होता है। इसलिए महर्षि रमा साफ करें कि गुरु केवल एक है और वो परमेश्वर है। तो ऋषि ऋषियों की बात तो सुनो, वो क्या कह रहे हैं। तो ज्ञान दो कैसे जाएंगे, ज्ञान भी तो एक ही होगा। जो परमेश्वर एक है, ज्ञान देने वाला एक है, तो ज्ञान भी तो एक ही होगा। वक्त के हिसाब से उसको प्रकट करने के तरीके बदल जाते हैं, बस ये होती है। जैसे महाराज जी ने संतावास लिखा, तरीका बदल दिया उन्होंने। प्रेमी ने कहा महाराज जी इतने शास्त्र हैं भारत में, आपने एक और लिख दिया। ओ प्रेमी, इन्होंने गीता लिखी है। तब महाराज जी बता रहे हैं वो गीता लिखी है। अब गीता जो समझते हैं वो और संतावास समझते हैं वो जानते हैं कि गीता को समझने में ही ये संतावास हेल्प कर रही है। गीता से हटके कोई ज्ञान संतावास नहीं दे रही है। इसलिए महाजी ने यह भी दूसरी बात भी कही, इन्होंने कोई नई चीज नहीं लिखी है। देखो महाजी कह रहे हैं इन्होंने कोई नई चीज नहीं लिखी है। यदि मैं महाजी की तारीफ करूं, महाजी ने नई चीज लिख दी है, ये मेरी अज्ञानता है। सत्पुरुष नई चीज क्या लिखेगा। तो शास्त्रों का मर्म समझना है तो समता विलास समझना आसान है कंपेरेटिवली। डायरेक्ट उपनिषद पढ़ोगे, गीता पढ़ोगे, आपको समझ में नहीं आएगी। समतावलास जिसने मेहनत करके समझ ली, उसको सारे शास्त्र धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे, सारे शास्त्र समझ में आ जाएंगे। इतना डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कहीं है ही नहीं उपलब्ध। तो इसीलिए जब आप इन चीजों को गहराई से समझते हो, तब आप अपने आप को जीव करके याद करने लगते हो। मैं जीव हूं, मैं जिंदा वस्तु हूं। जिंदा उसे कहते हैं अध्यात्म में जिसके अंदर होश होता है, जिसके अंदर चेतना होती है, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस होती है। मैं सिमरन करने बैठता हूं तो मैं जानता हूं, देखो मेरा मन मुझे परेशान कर रहा है। देखो जब सिमरन करते हो और मंत्र में मन नहीं लगता, मन के अंदर दूसरे ख्याल आने लगते हैं, तो आप क्या कहते हो, आपका स्टेटमेंट क्या होता है। देखो मन मुझे परेशान कर रहा है, मन मुझे सिमरन करने नहीं दे रहा है, इससे कैसे मुक्ति पाऊं। ये ऐसे ही हो गया जैसे घर में चैन से बैठे हो, बाहर दुश्मन आया और दरवाजा उसने पीटना शुरू कर दिया, तो क्या कहते हो, दुश्मन मुझे परेशान कर रहा है, चैन से बैठने नहीं दे रहा है, दुश्मन साफ अलग नजर आता नहीं आता। उसी प्रकार जीव जब इन शास्त्रों का स्वाध्याय करता है तो इस मन और तन को अपने से अलग करके जानता है। लेकिन मैंने ही इसको पाला है ना, तो वक्त जितने कितने वर्षों में पाला है मैंने, कितने जन्मों में पाला है मैंने इसको। अब ये बिगड़ा हुआ घोड़ा एक दिन में तो नहीं समझ आएगा, वक्त लगेगा ना। लेकिन गुरु का वो वाक्य याद करता है। गुरु ने कहा है जैसा मैंने बताया है, जो तुझको पांच नियम दिए हैं, इस पांच नियम के अनुसार यदि तू जीवन बनाएगा ईमानदारी से, तो धीरे धीरे तेरा मन जो है सिमरन में लगने लगेगा। महाराज जी कहते हैं प्रेमी समता विलास में कि इन पांच नियमों का पालन करने वाले मनुष्य के अंदर, पांच नियमों का पालन करने वाले जीव के अंदर बुद्धि बल आ जाता है। बुद्धि बल का मतलब इस मन से लड़ने की सामर्थ्य उसके अंदर आ जाती है। इच्छाओं से लड़ने की सामर्थ्य उसके अंदर आ जाती है, अपने ऐबों से लड़ने की सामर्थ्य उसके अंदर आ जाती है। तो ये जो है ये महारथी बन जाता है, इस बिगड़े हुए घोड़े को, मन को संभाल लेता है। महाराज कहते हैं ये संभलता कैसे है, मंत्र शक्ति से संभलता है। यदि परहेज पूरा है, यदि मैं वैसा ही जीवन जीता रहूं और जोर लगाता रहूं मैं 4 घंटे रोज सिमरन करने का, तो ये कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि एक तरफ संस्कारों की सफाई कर रहा हूं मंत्र के द्वारा, और दूसरी तरफ कर्मों के द्वारा संस्कार का निर्माण कर रहा हूं। तो बात तो वही रही, एक गड्ढे में से एक बाल्टी पानी निकाल रहा और एक बाल्टी पानी दूसरा भरता चला रहा, कहां पानी निकलेगा। तो गलती देखें, गलती कहां है भाई। यदि आप गलती नहीं देखोगे तो ये प्रॉब्लम आपकी हमेशा ही बनी रहेगी। आप खुद देखो कि आप आज तक क्या इस होश में आए हो कि मन और देह मुझसे अलग चीज है, लेकिन ये मेरा पीछा कभी भी नहीं छोड़ती। जब पीछा नहीं छोड़ती तो इसका शुद्धिकरण तो किया जा सकता है। तो शुद्धिकरण कैसे होता है, अपने मां जी कहते हैं प्रेमी सत्कर्म करो और सत्सिमरन करो, ये तो कहते हैं। तो सत्कर्म और सत्सिमरन में सारी वो चीज आ जाती है जो धीरे धीरे आपके मन का शुद्धिकरण करती है। और मन जैसे जैसे शुद्ध होता है वैसे वैसे आप देखते हैं क्या घटना घटेगी आपके साथ, कि जब आप सिमरन करने बैठोगे तो आप क्या देखोगे कि पहले जब सिमरन करता था तो कभी किसी की लड़ाई आती थी याद आती थी, कभी किसी का क्रोध याद आता था, कभी कोई घूमने की चीजें याद आती थी। लेकिन अब सिमरन करता हूं तो क्या याद आता है, कहीं किसी की सेवा करी है तो वो याद आ रही है, कोई सेवा पेंडिंग पड़ी है तो उसकी याद आ रही है, आपको उन्हीं सत्कर्मों की याद आती है। संगत का कोई काम पेंडिंग पड़ा हुआ है वो करना है उसकी याद आ रही है आपको। जब सत्कर्म कर रहे हो तो सत्कर्मों के ही संस्कार मन में बनेंगे नहीं बनेंगे। तो आप देखोगे कि सिमरन वही कर रहे हो आप जो पहले कर रहे थे, लेकिन अब आपको दोष वाले कर्म छोड़कर सत्कर्मों की याद आ रही है। लेकिन आप देखते हो गए कि आप कह रहे हो कि सत्कर्मों से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये ईश्वर का सिमरन है। मन और तन से छुटकारा तो सिमरन दिलाएगा ना, ईश्वर से मिलन तो सिमरन कराएगा ना, कर्म तो नहीं कराएंगे, कर्म तो संस्कार बनाएंगे। लेकिन जो बेचैनी आपको भोगवादी कर्म देते थे उनके संस्कार, अब ये सत्कर्मों का संस्कार जो है आपको वो बेचैनी नहीं देते, याद तो दिलाते हैं उसकी। इसलिए महाजी तीसरी बात कहते हैं, अब आपको अगली बात समझ में आएगी। प्रेमी सेवा करके उसके फल की तरफ मत देख, सेवा तुझसे बन गई बस प्रभु तूने तेरी इच्छा थी तेरी इच्छा पूर्ण हुई। जैसे महाजी ने समता प्रणा ग्रंथ जब पूर्ण हो गया, माई कहा प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हुई, महाजी की इच्छा नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण, तू करता तू हरता सर्व तेरी आ गया। तो सेवा कर्म भी करने के बाद मैं यदि उसके फल पे अपनी नजर रखूंगा, देखो इतना कर्म कर लिया इतना देखो बढ़िया फल निकला इसका, ये निकला वो निकला, तो भैया ये संस्कार बनेंगे ना मन के अंदर फिर ये। तो इसीलिए प्रभु करने वाला है, लीला सब ये प्रभु की है। इसीलिए कहते हैं कि संसार को मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड समझो, ईश्वर का प्रकाश समझो संसार को। देखो संता विलास में कई जगह वर्ड्स अलग अलग आए, कहीं आया है ईश्वर का प्रकाश है, संसार क्या है ईश्वर की मैनिफेस्टेशन है। तो क्यों ईश्वर का मैनिफेस्टेशन, क्योंकि संसार में कोई चीज पैदा ही नहीं हुई है, इसलिए अध्यात्म में संसार को संकल्प रूप कहा जाता है। सारा जगत में जब ईश्वरी सत्ता मौजूद है, एक ही चीज मौजूद है, तो पैदा कहां से हो जाएगी बताओ मुझे। लेकिन हमको नजर आ रही है, जब नजर आ रही है तो इसलिए सत्पुरुष कहते हैं प्रेमी ये तेरे मन का संकल्प है। कैसे है उसका उदाहरण देते हैं, जैसे स्वप्न का जगत पूरा का पूरा वो तेरे मन के संकल्प से खड़ा होता है, और जब तू जागता है इस जागृत हालत में आता है तो तू स्वीकार कर लेता है वो वास्तविकता नहीं थी वो मेरे मन का संकल्प मात्र था। तो जैसे संस्कार थे उन्हीं के अनुसार संकल्प ने स्वप्न की रचना दी, ऐसे ये संसार भी तो आज भी यदि तेरे मन का संकल्प खत्म हो जाए तो तू खुद देखेगा, अपने अनुभव से देखेगा कि यह संसार गायब हो गया। जब संसार गायब हो गया तो तेरी देह भी गायब हो जाएगी, वो रह जाएगी क्या, तो तेरा मन भी गायब हो जाएगा। तो जीव की उस हालत का नाम है समाधि, और ये अनुभव की बात है। सारे सब कुछ इस बात का अनुभव करते हैं। तो समाधि का अनुभव जहां होगा वहां ना मन का अनुभव होगा, ना तन का अनुभव होगा, ना संसार का अनुभव होगा, ये रह नहीं सकते। तो समाधि वाला पुरुष जानता है कि ये संसार संकल्प रूप है, क्योंकि समाधि जब टूटती है तो वाणी बयान कर रही है, उस हालत का भी बयान कर रही है कि योगी रोए समाधि को छोड़े प्रभु का हुक्म विसार। कि वो योगी भी दुखी होता है क्योंकि संकल्प पैदा हो जाता है, समाधि टूटती है, फिर मन और तन और संसार दिखाई पड़ता है उसको। लेकिन इस भेद को समझ गया, ये वास्तविक नहीं है, इसलिए वो कोशिश करता है हर वक्त समाधि में रहने की, ताकि ये जो संस्कार हैं ये धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाए और उसके बाद ये खत्म ही हो जाए। जब ये संस्कार परमानेंट खत्म होते हैं तो वो सहज समाधि है, जीव की वो स्थिति जहां वो खुद ईश्वर है। ऐसा जीव जो है वो गुरु कहलाने योग्य है, उसको कहते हैं गुरु। अब बताइए मुझे, महर्षि रमण कह रहे हैं गुरु केवल एक है, तो यहां आके परिभाषा समझ में आती है, वास्तव में गुरु तो एक है। जहां मन नहीं है, जहां तन नहीं है, ये दो चीज का बंधन नहीं है, जहां संसार नहीं है वहां दो कहां से हो जाएंगे, वहां सीमा तो होगी नहीं कोई। ये पता, यहां के पता रहता है कि महाजी कहते थे प्रेमी जब तक ये आत्मलीनता ही प्राप्त ना हो जाए तब तक गुरु बनने का अधिकारी नहीं है। अब बताइए गुरु इंडिविजुअल है, मेरा गुरु तेरा गुरु है, या वो जगत गुरु है। यहां आगे जगत गुरु की परिभाषा समझ में आती है। यहां तो सारे अखबार वाले सबको जगत गुरु बना देते हैं, सबको टाइटल मिलता है जगत गुरु का। शायद ऐसा गुरु जगत में आपको एक मिल जाए तो काफी है, जो वास्तव में जगत गुरु एक मिल जाए तो काफी है। तो ऐसे जगत गुरु की जो रचना है, जो हमारे सामने उपलब्ध है, हमको आज के वक्त में समता विलास के रूप में और समता प्रकाश ग्रंथ के रूप में, ये हमारा भाग्य नहीं है, हमारी भाषा में है। और यदि हमारे अंदर विल हो उसको समझने की, हम समझ सकते हैं। विल नहीं है तो नहीं समझ पाओगे, सादी किताब भी नहीं समझ पाओगे। यदि आपके अंदर तड़प है और आपके अंदर जो है दर्द है मुसीबत में फंसे होने का, तो आप इस दर्द से निकलने की कोशिश करोगे, कोशिश करोगे तो ये समझ में आएगी। भाई प्रभु ने रचना मेरे लिए की है ना, ये यदि मेरे अंदर उसकी जिज्ञासा है, तड़प है उसको जानने की, तो अंतर्यामी प्रभु मदद नहीं करेगा मेरी। नहीं समझ में आ रही है, समझाने वाला भेजेगा, ये प्रभु का काम है। मैं यदि प्रभु के लिए जीना चाहता हूं तो प्रभु मेरे लिए हर चीज की व्यवस्था करेगा, वो अंदर बोलकर भी आपको गाइड कर देगा। और जिस पर आपने जिस स्वरूप पर विश्वास किया, मान लिया मैंने मंगतराम जी पर विश्वास किया है, यदि मैं कहीं अटका हूं तो वो प्रभु मंगत बनके मुझको मेरे सामने खड़े होकर भी बता जाएगा, स्वप्न में आकर भी बता जाएगा, और अंदर बोलकर भी समझा जाएगा, अंदर बोलकर भी समझा जाएगा। ये भक्तों के साथ घटनाएं घटती हैं, आज के दिन भी घटती हैं। तो इसलिए जो भक्त हैं वास्तव में इस रहस्य को वही जानते हैं। महाजी ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करे पुकार। यदि अंदर गुरु नहीं समझा सकता, नहीं बोल सकता, तो महाजी तो झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब महाजी झूठ नहीं बोल रहे हैं कि सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करे पुकार, हर पल तुझको पुकार रहे हैं कि तू मेरी ओर आ, मैं तेरे अंदर ही बैठा हुआ हूं, अंदर ही रमा हुआ हूं तेरे। बताइए यदि ये सत्य नहीं है कि वो अंदर बोलकर समझा सकता है तुमको, तो ये बात झूठ नहीं होगी फिर। लेकिन ये वही जानते हैं जो वास्तव में भक्त हैं, जो वास्तव में जिज्ञासु हैं। जैसा कि संत विलास महाजी ने चैप्टर लिखा है, जिज्ञासु का निर्मल प्रण, चैप्टर पढ़ो जरा, वहां जिज्ञासु के लक्षण लिखे हुए, जिसके अंदर ईश्वर को जानने की जिज्ञासा वास्तव में होती है, वो कैसा जीवन होता है, कैसी भावना होती है। जिज्ञासु का निर्मल प्रण समता विलास का आखिरी चैप्टर है, उसके बाद परिशिष्ट खंड शुरू होता है समता विलास का, पढ़कर देखिए। सभी कहते हैं हम भक्त हैं, लेकिन पढ़कर तो देखो कैसा होता है भक्त। तो सब चीजें लिखी है वहां पर। तो इसीलिए जब आप के अंदर यह समझ पैदा होगी कि मैं जीव हूं, मैं मन और देह के बंधन में हूं, तो इसके बंधन से मुक्ति का रास्ता क्या है, तो आप जब इस लिए समता विलास पढ़ोगे तब आप पाओगे कि संसार का जो मेरा बिगड़ा जीवन है इसको मैंने गुरु के मार्गदर्शन अनुसार बनाना है, और जो मन के संस्कार हैं तो ये दो तरह से आपके सुधरते हैं। नंबर एक, पहले जो आप तमोगुणी और रजोगुणी कर्म करते थे उसके संस्कार आपके मन में बन गए थे, अब आप सत्कर्म करने की कोशिश करो तब क्या होगा, आपके अंदर सतोगुणी संस्कार बनेंगे। और जो ये सिमरन है, ये सिद्ध मंत्र का जाप है, ये क्या करेगा, जो पुराने संस्कार हैं इसका शोधन करेगा, इसकी सफाई करेगा, ये मंत्र का काम है। तो धीरे धीरे आपका जो प्रैक्टिकल जीवन है वो सुधर रहा है, सतोगुणी आप कर्म कर रहे हो तो सतोगुणी संस्कार का निर्माण होगा नहीं होगा, लेकिन जो पुराने संस्कार मन के अंदर है इसकी सफाई कौन करेगा, ये मंत्र करेगा। तो इस प्रकार से मनुष्य का जो मन है ये शुद्ध हो जाता है, इसके अंदर फिर ईश्वर की बातें उठती हैं। आप बैठोगे तो सेवा की बात याद आएगी, या सत्संग की बात याद आएगी, ऐसी बातें याद आएंगी। और यदि भोग की बात याद आ भी गई तो आप एक चीज और देखोगे, उसमें अट्रैक्शन नहीं रहा, संस्कारवश उसके संकल्प तो आ रहे हैं लेकिन उसमें अट्रैक्शन गायब है, ये चेंज आप पाओगे इसके अंदर। तो यही उन्नति है। कई बार लगता है ना कि अरे साहब मुझे तो 20 साल सिमरन करते हो गए, मन में संकल्प अभी भी उठते हैं, लेकिन संकल्पों का स्वरूप देखो क्या हो गया। संकल्पों का एनालिसिस करके देखो, पता लग जाएगा कि कितनी बड़ी चेंज आ गई। तो बताइए, बीच में डेथ हो भी जाए तो ये शुद्ध मन लेके जाऊंगा नहीं जाऊंगा मैं, कि मन तो संगी रहेगा ना, देह तो भस्म हो जाएगी, वो तो नहीं बनेगी, लेकिन मन तो नया नहीं बनेगा, मन तो जीव के संग वही रहेगा ना। तो कितना शुद्ध मन के साथ में नई नई देह धारण करूंगा, तो वहां मेरी मंजिल आगे जाएगी नहीं जाएगी। तो प्रभु मेरे मन को सुरक्षित रखते हैं, देखो ना प्रभु ये काम करते नहीं करते मेरे लिए, मेरी संपत्ति को वो सुरक्षित नई देह में प्रदान कर देते हैं। तो जो होशियार व्यक्ति है, जिसके अंदर सत बुद्धि है, वही होशियार है। पैसे ज्यादा कमाता है वही होशियारी नहीं है मनुष्य की, इसको होशियारी नहीं कहते अध्यात्म। अध्यात्म में जो मनुष्य विवेकशील है उसको होशियार कहते हैं, क्योंकि उसको अपनी जिंदगी की समझ है, कहां मेरी बर्बाद हो रही है, कहां मैं इस गुलामी से मुक्त होऊंगा। तो ये विवेक जब मैं हासिल करता हूं, और इसके साथ साथ वैराग्य स्वयं ही आता है आपके पास, वो आएगा ही आएगा। तो विवेक और वैराग्य के साथ जब मैं सिमरन करता हूं, तब मुझको पता लगता है कि सिमरन में कैसा प्रेम आता है। तब आपको ये बात समझ में आएगी कि महामंत्र को ईश्वर जानकर सिमरन करना चाहिए। नाम ब्रह्मेति उपासते, नाम को ब्रह्म जानकर उपासना करनी चाहिए। तो जब मैं मंत्र जाप नहीं करता उस समय, फिर उस समय मेरे अंदर भावना रहती है कि मेरा ईश्वर का मिलन हो रहा है, इस प्रेम से सिमरन करता हूं, क्योंकि भोगों का बोझ तो कम हो गया, वहां सतोगुणी संस्कार आ गए। तो सतोगुणी संस्कार आपकी मदद करते हैं सिमरन के अंदर। यदि उस समय मालूम क्या याद आएगा आपको मन के अंदर कि समता विलास में क्या पढ़ा था, ये संकल्प आ रहा है, इसका क्या इलाज है, वही सब सब याद आ जाएगा वहां पर। सिमरन रुकेगा तो शास्त्र का मनन चालू हो जाएगा वहां पर, ये चेंज आएगी आपके अंदर। तो शास्त्र का मनन आपके सिमरन में हेल्प करेगा या बिगाड़ करेगा, विचार करके देखो। क्योंकि सिमरन जो शास्त्र का सिमरन वो भी तो मन में ही चलेगा ना, तो ये सिमरन मन में सहायक होगा या बाधक होगा। तो इसीलिए, क्योंकि संस्कार वो नहीं बने, वो मेहनत हमने नहीं करी, जिसकी कमाई करी वो संकल्प आ रहे हैं। इस तरह ये प्रक्रिया लंबी जरूर है लेकिन प्रक्रिया यही है, क्योंकि पास्ट में भी जो मैंने लंबे वक्त तक ये बंधन वाले कर्म किए हैं उसी कारण संस्कार बने हैं, तो आज मेरे स्मरण में बाधक बन रहे हैं, और यदि मैंने इस प्रकार का जीवन जिया तो कल को मेरे ये संस्कार भी बनेंगे, सतोगुणी संस्कार भी बनेंगे, तो स्मरण में मेरे सहायक सिद्ध होंगे। ओम ब्रह्म सत्यम।